राम परलोक पुनर्जन्म नाम की पुस्तक में लेख पढ़े हुए आचार्य श्री 1008 महंत श्री शमाराम जी महाराज के मुखारविंद से राम राम राम।
यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। बहुत बढ़िया लेख है। महात्मा गांधी के भी कई पत्र हैं, कई राजगोपालाचारी के भी पत्र हैं, कई बातों का संकलन किया है। जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, इसी नागपंचमी की बात है। दोपहर को भोजन करके लेटा ही था, कमरे में धम्म की आवाज आई। देखा दीवाल के मुक्के से बिल्ली कूदी। अरे ये क्या, इसके मुंह में तो एक कबूतर। यही कबूतर अभी देखते देखते उधर उधर भाग रहे थे। मैंने सोचा कबूतर आपस में खेलते हैं, मुझे क्या पता कि मौत को सिर पर मंडराते देखकर बेचारे कबूतर जीवन के लिए दौड़ा दौड़ी मचाए हुए हैं। बिल्ली के पीछे दौड़ा, परंतु बिल्ली कबूतर को कब छोड़ने वाली थी। वो छत की तरफ भाग गई, कबूतर का पंख फड़फड़ाने लगे, बिल्ली को धमकाया तो कबूतर को छोड़ दिया, लेकिन कबूतर तब तक मर चुका था। मेरे मन में कबीरदास जी की बात याद आई, मीच बिलैया खैंघेरे ऐसो मऊ संसार पेखना रहनन कौ पैहे रे, सूधे सूधे रेंग चलो तुम नतरु कुदका दबैये रे, बारे बूढ़े तरुणे भैया सबहु जमले जईहे रे, मानुष बपुड़ा मूसा कीनो मीच बिलैया खैये रे, धनवंता अरु निर्धन मन ही ताकी कछुन कानी रे, राजा परजा सब करी मोरे ऐसो काल बढ़ानी रे। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। संसार में और सब अनिश्चित है, लेकिन निश्चित केवल मृत्यु है। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज एज श्योर एज डेथ। ये बिल्कुल पक्की बात है जैसे मृत्यु होती है। रूप राशि पर गर्वन करना ओ फूलों की रानी, समय रेत पर उतर गया कितने मोती का पानी, लाख का घर पल भर में खाक हो जाता है, बने बनाए महल आनन फानन में जमीन में लौटने लगते हैं, रूप राशि धन और यौवन पद सम्मान सब देखते देखते स्वाहा हो गया। कभी कभी विचार आता है, वाह रे कारीगर धन्य तेरी कला, तेरा चक्र अद्भुत है। आदमी इसी गोरख धंधे में फंसा, इसी जाय माया जाल में डूबता उतरता रहता है। हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, जो का त्यों रह गया पकड़ ले गया काल, काल देव आते हैं पल भर में हमारी मुश्कें बांध कर चल देते हैं, न उनके आने की घड़ी निश्चित है और न उनके आने का बहाना भी निश्चित है। कभी रोग के बहाने आ जाए, बीमारी के बहाने से आ जाए, कभी आगजनी के बहाने से आ जाए, तूफान के बहाने से आ जाए, महामारी के बहाने से, कभी और कुछ, कभी सांप के काटने से आ जाए, कभी सिंह के दहाड़ने से आ जाए। काल को न रहम है न दया है, घड़ी की सुई ठिकाने पर पहुंची नहीं कि बस अपना फंदा कसा। रहिए आप बड़े बहादुर, रहिए आप बड़े शूरवीर, रहिए आप करोड़पति अरबपति, उनके आगे आपकी दाल नहीं चल सकती। डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, तबीब हो, सुइया हो, गोलियां हो, सब बेकार। आसपास जौदा खड़े सभी बजावे ढोल, मंज महल से ले चला ऐसा सभी बजावे गाल। आसपास जौदा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। सोचने की बात है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइये, तादिन तेरे तन पर वर के सबे पात झर जाई है। घर के कहे बेग ही काढ़ो भूत भये कौ खई है। जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी सौ देख ही डर है। जो घर में भाई बंधु हितु मित्र स्त्री पुत्र सब हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे और सब कहेंगे जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो, ये भूत बनकर कोई खाने जाए। माथा पकड़ के माता रोवे, भुजा पकड़ के भाई, लपट झपट के त्रिया रोवे, हंस अकेला जाए। हाड जले ज्यो लाह कड़ी को, केस जरे ज्यो घासा, सोना जैसी काया जर गई कौन आयु पासा। तुम्हारा सब कुछ सारी दौलत सारी जर जमीन सारे सगे संबंधी यहीं छूट जाते हैं, स्मशान में कोई साथ नहीं देता। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। प्राण राम जब निकसन लागे उलटी गई तब दोनों पुतरिया, भीतर से बाहर जब लाए छूट गई सब महल अटरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वह सूखी लकड़ियां। केवल थोड़ी सी सूखी लकड़ियां लाश के साथ जाती हैं। चिता में लगकर अग्नि की ज्वाला में दो तीन घंटे के भीतर सोने जैसी काया राख के रूप में भस्म हो जाती है और दुनिया वाले कपाल क्रिया करके थोड़ी देर रो पीट करके घर लौट आते हैं। ये जीवन का स्वरूप है। विश्व का प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव छोटा हो बड़ा हो लेकिन वो काल का कलेवा है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, फर्क इतना ही है एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि मौत आएगी, एक दिन जरूर आएगी, उससे किसी तरह छुटकारा हो नहीं सकेगा। परंतु कितने आश्चर्य की बात है, ऐसा जानते हुए भी हम मानते हैं कि मौत से हमसे कोई वास्ता ही नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत में कहा, अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति है यमालयम, शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्य मत परम। सब लोग जानते हैं कि हम लोग रोज मरते हैं, पर हम तो कभी मरेंगे नहीं ऐसा भी साथ में मानते हैं। इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा। कूच के नक्कारे बज रहे हैं, विश्व की धर्मशाला में आने जाने वाले यात्रियों की रेल पेल मची हुई है, पर हमें तो कोई परवाह ही नहीं है। अजब सरा है ये दुनिया की जिसमें शहर और शाम, किसी का कूच किसी का मुकाम होता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी के स्वागत की शहनाई बज रही है और किसी की विदाई की मरसियां पढ़ा जा रहा है। रोज आठ पहर 64 घड़ी ये तमाशा चल रहा है। हम सब का स्वागत करते हैं, सबको विदाई करते हैं, पर यह नहीं सोचते कि अपना नंबर भी आने वाला है। कदम सुए मरकद नजर सुए दुनिया, किधर देखते हो कहां जा रहे हो। पर हम हैं कि जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोलते, हमने जानबूझकर अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। ऐसा न होता तो क्या हमें इस क्षणिक मिट्टी के खिलौने पर इतना गर्व, इस शरीर पर इस पानी भरी खाल पर इतना अहंकार, कभी नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, भगवान दो मौके पर हंसते हैं, एक तो तब जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन को नापते और कहते हैं कि इतनी जमीन मेरी है और इतनी तेरी है, तब भगवान हंसते हैं। और दूसरा कि जब कालदेव सिर पर खड़े हैं और डॉक्टर कहता है कि मैं इस रोगी को बचा लूंगा, स्त्रियों और पुरुषों को हर उम्र के लोगों को, छोटे से छोटे दूध में है बच्चे को, जवान को, बड़ों को, बूढ़ों को मैंने दम तोड़ते देखा है। उनकी शवयात्रा के साथ स्मशान जाने का जीवन में अनेक मौके मिले हैं। कभी हितु मित्रों की, कभी सगे संबंधियों की, कभी परिचितों की शवयात्रा के साथ गया, तो कभी यूं ही मणिकर्णिका का दृश्य देखने चला गया। बनारस में घाट है मणिकर्णिका घाट, एक मिनट भी एक मुर्दा न जले ऐसा संभव ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। वहां हर दम वहां पर एक न एक मुर्दा जलता ही रहता है, रात हो चाहे दिन हो। रिकॉर्ड है अभी हजारों वर्षों का, एक सेकंड भी, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ की नगरी है। मणिकर्णिका का दृश्य देखने चला गया। रास्ते में पिंडदान करते समय पुरोहित कहता है, श्मशान मार्ग में पिंड दिया जा रहा है, सोचता हूं शव की यात्रा तो सभी राजपथों से होती है, तो जिधर देखिए उधर श्मशान मार्ग ही तो है। कहीं किसी की चिता जगाई जा रही है, कहीं किसी का बच्चा जल प्रवाह किए जा रहा है, कहीं चिता सुलग रही है, कहीं चिता धधक रही है। कभी कभी तो इसी मणिकर्णिका घाट पर 10-10, 15-15 चिताएं एक साथ धधकती हैं। कहीं हड्डियां पड़ी, कहीं खोपड़ियां पड़ी, कहीं कौवे, कहीं गीर, कहीं कुत्ते, कहीं लाशों को नोच रहे हैं। सगे संबंधी बिलखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। जगत की नश्वरता, क्षणभंगुरता, ये सारा दृश्य देखकर जी भर आता है, आंखें भरी आती है। कभी कभी तो फूट फूट कर रोने को जी मचलता है, परंतु कितनी देर टिकता है श्मशान का वैराग्य। घाट पर ही मन तरह तरह की सब्ज बाग दिखाने लगता है। मन में आता है, अरे मूर्ख, जो हो गया सो हो गया, मौत आएगी तब देखा जाएगा, अभी से इसकी चिंता क्यों करते हो? जीवन तेरे सामने है, जीवन के नाना प्रकार के भोगों को भोगो, उनका मजा लो, दुनिया के बाग की बाहर लूट, ये बाहर चंद्रगो जी तो है, क्या हो गया, थोड़ी देर सुख मिलेगा तो लो, इसको क्यों छोड़ो? ऐसे ऐसे विचार आते हैं। मन की ये लतरानियां श्मशान घाट पर भी अपनी रौनक दिखाती हैं। जीवन के परम सत्य को देखकर भी हम उससे आंख मूंद लेते हैं, प्रेय के चक्कर में पड़कर श्रेय को सर्वथा भुला बैठते हैं। हमारी भोगाशक्ति यहां तक नहीं रुकती, हम मौत के नाम तक लेना पसंद नहीं करते, मौत के नाम से डरते हैं। किसी के शव को सड़क पर ले जाते देख माताएं अपने बच्चे को ढक लेती हैं, कहीं उस मृत्यु की छाया न पड़ जाए। कैसा प्रबल है हे मोह और हे ममता तुम्हारा ये आंचल, पर चाहे जितनी पेशबंदी करिए, मौत के नाम को भी कानों में मत पड़ने दीजिए, पर मौत कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कहते हैं कि लकड़ी का बोझा ढोने वाला एक बूढ़ा एक दिन थककर बोल पड़ा, क्या बताऊं, मौत भी तो नहीं मरती, मौत भी तो नहीं आती। बूढ़ा लकड़ लेके जा रहा था, सचमुच उसके सामने मौत आ गई। बोली, बाबा क्या तुमने मुझे याद किया? अरे तू कौन है? अभी तो मेरा ही तो नाम लिया था, मैं ही तो मौत हूं। वो बूढ़ा आदमी थर थर कांपने उठा, कहने लगा, मैंने तुझे इसलिए थोड़ी बुलाया था कि तू मुझे यमराज के घर ले चल, मैंने तो इसलिए बुलाया था कि जरा मेरे बोझ में हाथ लगाकर मेरा सिर हल्का कर दे। हम इसी तरह की बातें करके मौत को बहला देना चाहते हैं, पर वो भला हमारे ऐसे चकमों में कभी आने वाली नहीं है। तभी तो कबीरदास ठोक ठोक कर चेतावनी देते हैं, जीरा तुम जय हो हम जानी, राज करंते राजा जय हैं, रूप धरंती रानी, राज समान सभासद जय हैं, जय हैं सब अभिमानी, वेद पढ़न्ते पंडित जय हैं, कथा सुनन्ते ध्यानी, जोग करन्ते जोगी जय हैं, ज्ञान रटन्ते ज्ञानी, चंदा जय हैं, सूरज जय हैं, जय हैं पवन अरुपानी, मन ओ बुद्धि दोनों जय हैं सकल परानी, जोगी जय हैं, जंगम जय हैं जन धन मानी, कहे कबीर हरिजन ना जई हैं, जिनकी मति ठहरा नहीं। मतलब जाना सबको है, जिसने भी शरीर धारण किया है जाएगा, पर बचेगा कौन? जिसकी मति ठहरा नहीं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो स्थित प्रज्ञ है, वे बचेंगे। शरीर तो उनका भी जाएगा, पर वे शरीर तक मृत्यु देखते हैं, अपने आप तक मृत्यु की छाया भी पड़ने नहीं देते। उन पर जन्म और मृत्यु का बंधन चल नहीं सकता है, उन्हें कष्ट नहीं होता है, उन्हें व्यथा और पीड़ा नहीं होती है। मौत से बचने का उपाय है, मृत्यु के रहस्य को पहचानो। यह एक अनिवार्य जीवन का अंग है, इसका सामना करो। तो क्यों नहीं हम हंसते हंसते उसका स्वागत करेंगे? मौत एक बार जो आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा कि ये मरना क्या है। बुद्धि को स्थिर रखने का हम अभ्यास करें तो मौत भी हमारे लिए खेल की वस्तु बन जाएगी। महात्मा गांधी से लोग समय समय पर मृत्यु के विषय में पूछते रहते थे, उनके उत्तर में हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। एक पत्र राजगोपालाचारी जी को गांधी जी ने दिया, उसमें लिखा, हम ईश्वर को पहचानते हो तो मृत्यु में आनंद को मानना चाहिए, मृत्यु में भी आनंद मानना सीखना चाहिए, तब ईश्वर की पहचान होगी। एक पत्र दिया, ये पत्र दिया था राजगोपालाचार्य जी को 26/7/1932 को। एक और पत्र दिया था 14/11/33 को, बापू की बहन थी मणि बहन पटेल, उसको दिया था। बापू ने लिखा, मैं मृत्यु को भयानक चीज नहीं समझता, विवाह भयानक हो सकता है, मृत्यु कभी नहीं। एक जगह उन्होंने लिखा अलग से गांधी जी ने, ईश्वर के काल रूप का मनन करने से और उसके मुख में सृष्टि मात्र को जानने से बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। प्रतिक्षण काल का ये काम चलता रहता है, रुकता नहीं है। कभी कभी विचार करता हूं कि दुनिया के सब काम रात में ठहर जाते हैं, परंतु मृत्यु तो उसी प्रकार दौड़ती है जैसे दिन में दौड़ती है, वैसे रात में भी दौड़ती है, जैसे सर्दी में भी दौड़ती है वैसे गर्मी में भी दौड़ती है, सब समय दौड़ती, जैसे पृथ्वी पर दौड़ती है ऐसे आकाश में भी दौड़ती है, ऐसे ब्रह्मलोक में भी दौड़ती है। चाहे अनचाहे इसके मुख में हम अकल्पित क्षण पड़ने वाले हैं, बड़े छोटे, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, मनुष्य मनुष्यतर का यहां कोई भेदभाव नहीं है। क्यों न सबके साथ मैत्री संबंध करो, क्यों किसके साथ अपना स्वभाव खराब करो, क्योंकि इस काल रूपी भयंकर सर्प के अंदर पड़े हुए हम लोग आपस का व्यवहार बिगाड़ लेते हैं, शांति खो बैठते हैं, अपने जीवन का आनंद खो बैठते हैं, कितनी मूर्खता है। एक पत्र सेठ जमनालाल बजाज को लिखा 8/11/32 को, जो मृत्यु चाहे जब छोटे बड़े गोरे काले मनुष्य पशु और दूसरे सबके लिए आती है, उसका फिर डर क्या है और उसका शोक भी क्या है? मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जन्म की अपेक्षा मृत्यु अधिक अच्छी चीज होनी चाहिए, क्योंकि जन्म से पहले 9 महीने तक माता के पेट में कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और जन्म के बाद अनेक दुख होते हैं और मृत्यु के अवसर पर हम एक बार ठहर जाते हैं, सारे दुख वहां समाप्त होते हैं। इसलिए जीवन की अपेक्षा मृत्यु शांति देने वाली है, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। एक पत्र उन्होंने रावजी भाई पटेल को दिया था 7/3/14 को, मृत्यु के भय को दूर करने के लिए मनोविकारों को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप लोग मृत्यु से भगते हो, मृत्यु से बचते हो, मृत्यु को नष्ट करने का सोचते हो, बिल्कुल असफल प्रयास है। मन के विकारों को नष्ट करो, उनसे भगो, प्रसन्न रहो। खुद प्रसन्न रहेंगे तो दूसरों को भी आप प्रसन्न रख देंगे, नहीं तो ये बात चरितार्थ होगी कि बंदर का स्मरण न करके प्रयत्न में उसका ख्याल बना ही रहा। बापू का एक पत्र मीरा के नाम। जन्म और मृत्यु इन दोनों में ही महान रहस्य छिपा हुआ है। यदि मृत्यु दूसरे जन्म की पूर्व स्थिति नहीं है तो बीच का समय एक निर्दय उपहास है, अर्थात अगले जन्म का ये मृत्यु है ना बीच की कड़ी है। यदि ये बीच की कड़ी न होती तो इस जीवन में जो कष्ट का अनुभव करते हैं ये एक तरह से उपहास ही तो है। हमें ये कला सीखनी चाहिए, मृत्यु किसी की और कभी भी हो हम उस पर हरगिज रंज न करें। मेरे ख्याल में ऐसा तभी होगा जब हम सचमुच अपनी मृत्यु के प्रति उदासीन होना सीखेंगे। आएगी तो आएगी, उदासीनता कब आएगी? मृत्यु से उदासीन रहो। उदासीन कब आएगी? जब हर क्षण हमको ये भान होगा कि भाई हमें तो जो काम सौंपा गया है हम वो काम कर रहे हैं। बस ईश्वर की इच्छा को जानने से मालूम होता है। ईश्वर के सामने प्रार्थना करें, सदाचार से रहें और मृत्यु से उदासीन होकर के रहें। एक पत्र गांधी जी ने और लिखा, गीता में लिखा है, नासतो विद्यते भाव नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। इस श्लोक में मृत्यु का सारा रहस्य भरा हुआ है। अनेक श्लोकों में बार बार कहा कि शरीर असत है, असत का अर्थ माया नहीं, ऐसी वस्तु नहीं जो कभी किसी रूप में उत्पन्न नहीं हो, बल्कि इसका अर्थ है क्षणिक, नाशवान, परिवर्तनशील। फिर भी हम अपने जीवन का सारा व्यवहार यह मानकर चलाते हैं कि मानो हमारा शरीर शाश्वत है, हमारा व्यवहार भी शाश्वत है। हम शरीर को पूजते हैं, शरीर को पीछे पड़े रहते हैं। हम सब हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं। हिंदू धर्म में यदि कोई बात चांदनी की तरह स्पष्ट है तो वो यही है कि शरीर और दृश्य पदार्थ, इनकी आसक्ति अच्छी नहीं है। फिर भी हम जितना मृत्यु से डरते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, शायद ही कोई इतना करते हो। महाभारत में कहा गया है कि रुदन से मृत आत्मा को बहुत संताप होता है। जो आदमी मर गया उसके लिए जितना रोते हैं तो उसके पीछे उसको बहुत दुख होता है। गीता इसीलिए लिखी गई कि लोग मृत्यु को कोई भी भीषण न समझे, डरावना न समझे। मौत कोई खौफनाक नहीं है। मनुष्य का शरीर काम करते करते थकता है, थकने पर वो विश्राम चाहता है। ऐसे ही जीवन सारे इतने वर्षों तक काम करते करते अब मृत्यु रूप में विश्रांति को प्राप्त करता है। इसलिए इस मृत्यु को सहजता से लेना चाहिए, गीता हमें सिखाती है। और मैं प्रतिदिन इस पाठ को समझता हूं कि अशाश्वत वस्तु के लिए की गई सारी चिंता व्यर्थ है, व्यर्थ कालक्षेप है। ये गांधी जी ने लिखा। असत का भाव, इसका अर्थ है अस्तित्व का न होना। गीता पुकार पुकार के कहती है, हम अपने जीवन में सत्य को धारण करके जिए, माया असत्य पाखंड का त्याग करें। अनेक बार वाणी असत्य हो जाती है, पाखंड रूप हो जाती है। क्रोध असत है, काम, मोह, मद आदि असत हैं। हमें इन तमाम सर्पों का सत्र करना है। स्थूल सर्प तो बेचारा केवल शरीर को कष्ट देता है, पर ये काम, क्रोध, अहंकार, अक्रोध, ये सर्प हमारी रग रग में पहुंचते हैं और हमारी आत्मा को हानि पहुंचाने की धमकी देते हैं। आत्मा को हानि तो पहुंचाई जा सकती नहीं, क्योंकि वो अविनाशी है। यदि हम इस बात को समझ लें कि सत्य क्या है तो जन्म मृत्यु का रहस्य आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार रसायन शास्त्री कहते हैं कि जब मोमबत्ती जलती है तब उसकी किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, मोमबत्ती जलती है तब उसकी किसी वस्तु का नाश नहीं होता। मोम तो वो पिघलता है बस, नाश क्या होता है। उसी प्रकार जब शरीर मरता है और जलता है तब कोई एक ऐसी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती है, वो है आत्मा। जन्म और मृत्यु एक ही वस्तु की दो स्थितियां हैं। किसी स्वजन के मरने पर हम जो रोते चीखते हैं उसका कारण है स्वार्थ। ये सारा लेख गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका में दिया था। बापू के इन अनमोल उपदेशों को हम हृदय में धारण कर लें, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सच बात तो यह है, हमारी बुद्धि स्थिर हो, मोह ममता राग और द्वेष के चक्कर में हम न पड़े, फिर मौत का सारा डर दूर हो जाएगा। और वह दूर हुआ कि हमारा सारा जीवन एकदम आनंद में डूब जाएगा। दूसरी दृष्टि से सोचे तो मृत्यु का भय यदि वस्तुतः हमको आक्रांत कर ले तब भी काम बन सकता है, फिर तो हमें सच्चे वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। मौत सिर पर लटक रही है इतना दृढ़ विश्वास हो जाए तो फिर हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं, कोई पाप हमसे बनेगा ही नहीं। मतलब कितनी बढ़िया बात है, या तो मृत्यु से एकदम डरना चाहिए, एकदम डर करके वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, और या ज्ञान में स्थित होकर के मृत्यु से एकदम निर्भय होना चाहिए। न तो पूरे डरते हैं और न निर्भय हो पाते हैं। किसी को हम सताएंगे ही क्यों, किसी के बुरा हम चाहेंगे ही क्यों, हम जानते हैं कि पता नहीं कल का सूर्योदय हम देखेंगे भी नहीं देखेंगे, पर इस भय को हम आंख मूंद कर टाल देते हैं। किंतु हम लाख टालें ये टलने वाला नहीं, तब बुद्धिमानी इसी में ही है। हम जीवन के रहे सहे क्षणों को जीवन के एकमात्र चरम लक्ष्य प्रभु प्राप्ति के लिए ही प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। हम जो कुछ करें सो सब प्रभु पूजा हो। प्रभु से हमारी एक ही प्रार्थना है, हे नाथ इतना तो करना, इतना तो करना भगवन जब प्राण तन से निकले, श्री जमुना जी का तट हो अरुपास बंसी बट हो, वह सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले। बस प्रभु से यही प्रार्थना करके जीवन को पवित्र बनाना चाहिए।